ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज आपके रुद्रपुर के इस कृष्ण भावनामृत के केंद्र में जो सब श्रद्धालु भक्त और मातागण पधारे हैं, सबको संस्था की तरफ से विशेष स्वागत है। तो हम अभी भागवत क्लास करने जा रहे हैं। मुझे सूचना मिला कि आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आशा करूंगा आपको सब भले अब दो तीन हो आसपास में, ये 8 से 9 बजे तक आइए। इसी समय भगवान के दर्शन भी होता है और श्रवण भी होता है। तो ये श्लोक बोर्ड में लिखा है, उसको सबको पढ़ना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। 14 नंबर श्लोक है। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पाठ करेंगे। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च धेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च धेयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च धेयः पूज्यश्च नित्यदा।
तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोताय कीर्तयव्यस्य धेयः पूज्यश्च नित्यदा।
तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः
कीर्तितव्यश्च
और कोई प्रयास कीजिए।
तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
तस्मादेकेन मनसा
तस्मादेकेन मनसा
भगवान सात्वताम पतिः
भगवान सात्वताम पतिः
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
हेह पूज्यस्य नित्यदा
हेह पूज्यस्य नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पतिः
और कोई माताओं से
भगवान सात्वताम पतिः
कौन वो भारत पाठ कर रहे फटाफट फटो यस अरे नहीं
नहीं भगवान सत्पति
हरे कृष्ण। ये श्रीमद्भागवत महापुराण का श्लोक महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते महामुनि व्यासदेव जी को कहा गया भगवान का अवतार साक्षात भगवान ही स्वयं मुनि है नरनारायण कृत ऋषि अवतार तो साक्षात भगवान के द्वारा रचित ये श्लोक तो ये सब बहुत बहुत शक्तिशाली तो इसको अगर हम पाठ करें ठीक है हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं लेकिन इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है हिंदी तो जानते हैं अगर प्रयास करें पढ़ने के लिए अगर डेली क्लास करें ना 15 दिन के बाद आप भी बड़े सुंदर से आवृत्ति करेंगे लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करते हैं केवल भगवान भागवत की श्लोक को आवृत्ति करने से ही हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाएगा ये इतनी शक्तिशाली है तो इसलिए मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आज जितने आए हैं इतने प्रतिदिन 8 से 9 बजे आइए तो एक श्लोक कम से कम आवृत्ति कीजिए और बाकी व्याख्या तो ये इको क्यों हो रहा है प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द के अर्थ उसका अनुवाद और तात्पर्य लिखे उसी को पढ़ लीजिए अगर समझ में नहीं आता है आपस में थोड़ा आलोचना कर लीजिए यही क्लास है ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में दिए हैं प्रतिदिन पूरे विश्व में जो 600-700 केंद्र है सभी में कंपलसरी एक्ट है 8 to 9 भागवत के श्लोक पढ़ा जाए एक श्लोक और उनका हमारा कोई कुछ करना नहीं है एक श्लोक लिखें उसको पढ़े 3-4 बार और उसके एक एक शब्द के अनुवाद है और भाषानुवाद है फिर उसका भावार्थ है उसी को अगर पढ़े तो हमारे हृदय के जो रजोस्तम काम भावा नाना प्रकार तो अपने आप धुल जाएगा केवल 1 घंटा परिश्रम करना है आना है तो हम जिस प्रकार कर रहे हैं इस प्रकार हम अनुरोध करेंगे कि आप प्रतिदिन ऐसा कीजिए भले 2-3 कितने भी हो जो रेगुलर आएगा तो उनका बुद्धि आत्मिक विकास होगा निश्चित होगा 1 घंटा दुनिया भर के बर्बाद करते हैं यहाँ आए तो इस श्लोक के बाद में शब्दार्थ हैं आप शब्दार्थ लिख कीजिए तस्मात् अतः एकेन एकाग्र मनसा मन के द्वारा भगवान श्री भगवान सात्वताम भक्तों के पति ही रक्षक श्रोतव्य सुन्नयोग्य कीर्तितव्यश्च कीर्तितव्य गुणगान करने के योग्य च तथा ध्येय स्मरण करने योग्य पूज्य पूजने के योग्य च तथा नित्यदा निरंतर अब और थोड़ा आ जाए माता जी लोग आने बैठे स्पेस है इस तरह भी आ जाए कम दिस साइड ऑल्सो जेंट्स लोग इधर आ जाओ माता जी लोग इधर बैठ सकते हैं तो उसके अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विदान स्वयं प्रभुपाद जी के द्वारा आप अनुवाद पाठ करेंगे। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। उसके तात्पर्य पाठ करेंगे, सुनिए अटेंटिवली, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्ण तथा आश्रम में से हर एक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया चार कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसी को चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसे भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठी प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय मात्र है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादस्य वाले श्लोक में आरंभ में कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने का अन्य के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। ओम अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामत्रिक जय देव कृपा सिंधो जय लक्ष्मी पते प्रभो जय निरांबुज श्याम निर्जीमुत सन्निभ जय पद्माधरित्रिभ्याम निषेवित पदाम्बुजम जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभो दासत्वं देहि मे प्रभो। तो ये भागवत के भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय जिनके शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिए हैं दिव्य तथा दिव्य की सेवा, भगवान की दिव्यता को प्रकाश करने वाला भगवान की महात्म्य को प्रकाश करने वाला ये जो अध्याय है। बैठे बैठे वहीं बैठे, नहीं चेयर में नहीं बैठ बैठ सकते ना आप लोग, थोड़ा माता जी लोग आ गए जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम अध्याय में तो जिज्ञासा है। जब सुखदेव गोस्वामी की सिटिंग के बाद में ये जो भागवत शुरू हुआ है सूत शौनक संवाद, और शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को प्रश्न किए प्रथम अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में उसके महत्व वर्णन किया गया है। विशेष करके इस श्लोक में ये जो सबसे प्रथम शब्द है तस्मात, जो थोड़े बहुत भी सांस्कृतिक ज्ञान रखते हैं तस्मात शब्द का अर्थ है देयरफॉर। अंग्रेजी में जिसको देयरफॉर कहते हैं ना, कि कभी देयरफॉर हम लगाते हैं, ये शब्द कब यूज करते हैं, जब कोई कंक्लूजन होता है इसलिए, मतलब ये सब समझ लिए, सब सोच विचार करके डिसाइड कर लिए, देन देयरफॉर इट इज लाइक दैट, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है सबसे अंत में, इसलिए ये कहा जाता है। उसका मतलब, इसलिए कहने का मतलब आप सब चिंता विचार कर चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये पूरे भागवत ज्ञान को वैदिक भूरिणी भूरी कर्माणी श्रुतव्याणी विभाग सह अनेक शास्त्र उपनिषद को सब निचोड़ करके समझ करके युक्ति तर्क के माध्यम से छानबीन करके शुद्ध गोस्वामी पूछा था, शुद्ध गोस्वामी फाइनल ये देते हैं। और 88,000 शौनकादि ऋषियों भी उन्होंने एग्रीमेंट करते हैं, येस दे आर फोर, इसलिए तस्मात क्या करना चाहिए ना, एक ही न मनसा, केवल एक ही काम, एक मन लगा करके एकाग्र चित्त हो करके एक ही लक्ष्य रख करके एक ही काम को करना ही है। क्या है? तस्मात एक ही न मनसा भगवान सात्वतां प्रति ही। जो सात्वताम, जो सत्वगुण में रहते हैं वो भक्त है, सात्वत शब्द का अर्थ है भक्त। सात्वतांग पति जो भक्तों के रक्षक होते हैं उनको सात्वत पति है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु नारायण, वही सात्वतांग पति, वही भगवान जो भक्तों के रक्षक है, उन्हीं के, केवल उन्हीं के, तस्मात इसीलिए केवल वही भगवान जो भक्तों के रक्षक है उनके क्या करना चाहिए न, श्रोतव्य सुनना चाहिए उनके बारे में, कीर्ति तव्यस्य उनके बारे में बोलना चाहिए, ध्येय उनके ध्यान करना चाहिए, पूज्यस्य और उनके पुजारी करना चाहिए। बस पूरे संपूर्ण जीवन के एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बाकी मनुष्य को छोड़ करके सृष्टि में जो क्रिएशन में बनाए गए 84,00,000 प्रकार के शरीर हैं, जानते ना सब कितने डिजाइन है, 84,00,000 ऑफ स्पीसीज, इतने डिजाइन के शरीर हैं। ये केवल मनुष्य शरीर को छोड़कर बाकी शरीर में कोई ये फैसिलिटी है ही नहीं कि बैठ कर भागवत क्लास सुने। कभी देखें कि कुत्ता बिल्ली और कोई पशु पक्षी आकर बैठ सुनेंगे? नो, नहीं भाई, भगवान ने केवल इस मनुष्य शरीर में ये व्यवस्था रखे हैं कि वो ही इसको सुनेगा, उस कर्म चक्र से उबर जाएगा। इसीलिए सबसे डेंजरस, यद्यपि इतनी सुविधा दिया गया है मनुष्य शरीर में, तो इतने उत्तरदायित्व भी है। क्या उत्तरदायित्व है न, मनुष्य ही केवल 84,00,000 जोनी में से कर्म जोनी है, कर्म जोनी समझता ना, कर्म के फल केवल मनुष्य भोगेगा, बाकी कोई बिल्ली चूहा को खा गया उसको दोष नहीं लेगा, पाप नहीं लेगा। आप एक आलू भी खाएंगे पाप लेगा, हाँ बहुत ज्यादा मनुष्य है, क्योंकि सुविधा दी है सोच विचारने का, आप क्यों नहीं किया है ना, आप डर जाते तो नहीं है ना, आलू मटर भी खाएंगे तब भी पाप लगेगा, तो बोले तो क्या खाएंगे यार, हुआ थोड़ी रहेंगे, यही तो है जानने का विषय। हम कुछ भी करेंगे अगर सही नहीं करते तो, अब हम जो खाते हैं हम बोलते हम खाने के, तेरे बाप कहे थे क्या तू कैसे खाया, ये साधारण लोकाचार में हम जानते हैं, अगर दूसरे किसी को उसमें भक्त कहाँ चला गया उठ करके जुड़ूम चरित्र, आप लोग इसे भक्त दो ही तो नहीं हैं, फिर इस समय क्यों इधर उधर जाते हैं, सारे काम कुछ संबंध नहीं कर सकते हैं। तो ये साधारण नियम मनुष्य समाज में भी है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर सपोज एक फूल चाहिए मुझे, हमारे घर में फूल नहीं है कि उनके बगीचा में फूल है, तो फूल आप जाकर के मनमर्जी तोड़ के ला सकते हैं क्या? कटसी है भाई साहब एक फूल ले सकता हूँ, पूछेंगे ना? अगर पूछ कर लेंगे तो आप कुछ बोलेगा? अगर बिना पूछे ले ले तो आपका नाम से पुलिस कर सकता है, बांध करके खींच सकते हो, चोर चोर सब्यस्त होगा। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण संसार में जो भी कुछ है, हमारा कुछ है ऐसा अवश्यम इदम सर्वम जत किंचात जगत्याम जगत, इस जगत के संपूर्ण छोटे से लेकर के बड़े समस्त वस्तु ईश्वर का है, हम किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भले अपने आप को हम माने कि हम है करके, यहाँ माता जी हम बैठे हैं, बुरा मत माने, कभी कभी किसी के घर में हम जाते हैं, अभी 9 बजे ब्रेकफास्ट हमारे गरम गरम पूरी मटर और पनीर के आलू की सब्जी बना कर देते हैं और इतना टेस्टी, और जाओ खाकर बोलते हैं क्या स्वादिष्ट प्रसाद है, तो माता जी ग्रहण है, मैंने बनाई सही माता, हाँ सुबह से लगी थी मैंने, इसीलिए तो क्लास नहीं आया। तो उनको पूछे माता जी बुरा ना, मैंने एक बात पूछा ना, क्या? नहीं मटर आपने बनाए थे? वो तो लाए बाजार से लाए थे मटर। आलू आपने बनाए थे क्या? नहीं वो भी बाजार से। पनीर आपने बनाए थे? ना नहीं। तो जो हल्दी जीरा मिर्ची ये जो आप भी बनाए थे क्या? ना नहीं। चूल्हा आपने बनाए थे? नहीं। कढ़ाई आपने बनाए थे? नहीं। पानी आपने बनाए थे? नहीं। चूल्हा तो कैसे बोल दिया कि मैं बनाई? 50 वस्तु तो बोल दिया, सब कुछ आपने नहीं किया। अब किया क्या जिसने बोलता कि मैंने बनाई? ये हमारे चोर की आदत है। आप अपने क्रेडिट लेना चाहते हैं, तुम क्या किया तुमने? कुछ तो नहीं आपका है, करने का ताकत नहीं, कैसे बोल दिया तुमने किया? तो इसलिए कुछ भी वस्तु हम लेना चाहते हैं तो यही साधारण नियम है, उनको पूछ करके ले, भाई साहब कैन आई टेक इट, मैं यूज कर सकता, घर में प्रवेश मैं आई कम इनसाइड, ये नर्म होता ना, नियम होता ना, ठीक इसी नियम भी इसमें लागू होगा। अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, तो जिसका है उनको पूछेंगे ना, किसका है सर? प्रभु का है, तो उनको पूछे, यही है अफरिंग, जो भोग अफरिंग करते ना, अफरिंग का रहस्य यही है, जो भोग निवेदन करते हैं, जो आप बनाए, जो भी कुछ बनाए लेकिन ठाकुर जी के सामने रखकर हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप तो आत्मा राम है लेकिन मैं भुगता रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा खाने के बिना, 3-4 टाइम मुझे चाहिए इसलिए बनाया, ऐसे आपके ही समन सारे में बनाया, तो थोड़ा आपने परमिशन दे दीजिए मैं खाऊं, आप कृपा करके बुरा ना मानना, पर आपके ही वस्तु है लेकिन मुझे चाहिए प्लीज, आपका तो कुछ कमी नहीं है, तो ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करें प्रभु आपके वस्तु मुझे चाहिए, मैं खाने बिना मर जाऊं, थोड़ा आप कृपा करके परमिशन सैंक्शन करके मैं खाऊं, तो भगवान तो उदार है बेटा, ले जाओ खाओ। यही पूछ कर खाएं तब दोष लगेगा? दोष नहीं लगा। अगर इतना ना करके आप खा लिए, बनाए तो खाया तो जमराज के जेपी पुलिस आएंगे पकड़ कर खूब मारेंगे, जीवन भर सारे पाप खाया, सारे पाप खाया तुमने, बहुत पाप किया तुमने, केवल इतनी ही अंतर है, कुछ नहीं है, कुछ उलटपट नहीं है, वो ही पूरी बनाया, वो ही पूरी उसको केवल ठाकुर जी से परमिशन मांग करके दिया कि प्रभु आपकी वस्तु है, थोड़ा कृपा करके परमिशन दे दी मैं खाऊं, आप तो मुझे बनाए पेट ऐसे दिए दिन के 3 बार लोड करना ही पड़ता, तो इसलिए तो उनसे पूछ कर ले लो, वो मना नहीं करते, आप निर्दोष निर्मुक्त पुण्यभागी हो गए। अगर यही पूछना नहीं किए, बनाए खूब खाए, बाजार से लाए मस्ती करके खाए, उठाकर खा ले, इतने ही कट से भूल जाते हैं, जैसे मैं बोला कि किसी के बगीचा से फूल तोड़ लेने से वो 2 थप्पड़ मार सकता है आपको, जब वो मार सकता है उनका भी नहीं है वो फूल, वो तो किसे लाकर बना, लेकिन जिसका सचमुच है वो चाहे तो कितने दंड देश कर सकता है। तो इसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ हमारा नहीं है, कुछ भी ले प्रभु को पूछे, पानी भी पीने के लिए प्रभु आप कहे मुझे चाहिए तो थोड़ा कृपा करके परमिशन दे दो, हर चीज को परमिशन लेना चाहिए। तो जो भगवान हमारे ये सब कुछ बना के दिए हैं, केवल यही बना के नहीं दिए हैं, कुछ कुछ लोग हमको कभी कभी हम जाते हैं प्रचार में, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड तथाकथित ये आधुनिक समाज में जो सब पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं कभी कभी, ये पता नहीं आप लोग क्या हो गए, पढ़े लिखे नौजवान है, नौकरी वाकरी छोड़कर ही हरे कृष्ण कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, उसे क्या होता है, यहाँ कोई धंधा काम करो कुछ करो, ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है। तो एक बार ऐसे बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, मतलब शिक्षित मतलब रिटायर्ड IAS, बड़े सेक्रेटरी रैंक से रिटायर्ड किए थे, तो बरस पड़े। सर बुरा ना माने एक बात पूछूं, फिर क्या करना चाहिए, नरे जैसे हम जीते हैं ईमानदारी से जियो, किसी की बुरा मत करो, किसी की बुरा मत सोचो, ईमानदारी से जियो ना। सर यही तो समझ में नहीं आता, ईमानदारी किसको कहते हैं, ईमानदारी का मतलब क्या होता है। अच्छा ईमानदार नहीं जानता ना, ईमानदार मतलब देखो हम सीनियर सिटीजन है, हम अभी सीनियर सिटीजन है, हम देखो अपना मकान बनाया कोठी है, मैंने खुद कमा के बनाया, और इसमें देख रहे कितने सारे इलेक्ट्रिक लगाया मैंने, बल कितने डिजाइन का सब विदेश स्टाइल का मंगा करके, अरे इतने डिपॉजिट किया, फिर ट्रांसफार्मर लिया, फिर कनेक्शन लिया, वायरिंग किया लगाया, और बाकी तो सारे लोग मैं जानता हूँ, मीटर उठता है तो एक क्या करते हैं उसको, कुछ गड़बड़ करते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तो कभी भी सही बिल भेजता ही नहीं, तो इसलिए वो सारे ऊपर नीचे करने के लिए कई उपाय करके और टाइम पर भी नहीं देते हैं, ऐसे करके मैं कभी नहीं करता, ये मेरा अनेस्टी है, मेरी ईमानदारी है, जो बिल मीटर में उठता है वही डेट में उससे मैं भुगतान करता हूँ, कभी किससे हेर फेर नहीं करता हूँ, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है एक नया पैसा इधर नहीं करता हूँ, टैक्स टाइम पर जमा करता हूँ, होता ना आजकल जमा करना, आमदनी टैक्स भी जो कमाई के टैक्स सब टैक्स टाइम पर जमा करता हूँ, तो कोई किससे और कोई किससे में बना नहीं, मैं आराम से बना देता हूँ। अच्छा ये हाँ ये एक उदाहरण दिया ईमानदारी का, बहुत अच्छा बात है। आपने ये घर में इलेक्ट्रिफिकेशन किया, 50,000 का पहले जमा किया, फिर कितने का वायरिंग खर्चा ना, अरे लाखों लग गए वायरिंग में, और इतने सारे लाइट लगाया, और लाइट हमेशा रहता है UP और उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितने हमेशा लाइट रहता है, कल रात का तो एक्सपीरियंस होगा आपका है ना, नहीं अरे वो क्या लगाते हैं बैटरी में, क्या लगाते हैं उसको इन्वर्टर, वो भी चार्ज नहीं हो पाता, अब फिर भी टाइम पर देता है, दिन में 6 बार कटता है, पावर ऑफ होता है, फिर भी टाइम पर इलेक्ट्रिक बिल जमा करके आप बोलता कि मैं ईमानदार हूं। बुरा ना माने पूछू ना क्या, बोले एक ऐसे बल्ब है, एक ही बल्ब है, वो उसके लिए ना तो हम जमा किए थे ना कभी उसका वायरिंग किए थे, कहां से आता पता नहीं, एक ही बल्ब किसी ने टांगा है, केवल आपके घर के लिए नहीं संपूर्ण संसार के लिए एक ही बल्ब टांगा हुआ है, और कभी लाइन फेल नहीं होता, समझ गया ना कौन सा बल्ब है,
सूर्य
बल्ब, किसी को पता है कहां से करंट कनेक्शन है उसका, कभी पावर ऑफ होता है, अगर वो ना हो, ये एक ही छोटे से कमरा में 10 लाइट जलाया कोई काम है, मतलब क्या है, ऐसे एक बल्ब लगाया जो आपके जन्म से पहले, आपके बाप दादा परदादा के जन्म से पहले से लाइट देता रहता है, कभी बिल के बारे में सोचा, सोचा आपने, वो सीरियस हो गया मैं, आप मतलब बिल आ नहीं रहा है, आएंगे तो बिल पेमेंट कर पाएंगे, अगर केवल बाकी पुराना नहीं बकाया नहीं अभी का प्रेजेंट बिल आपके जन्म से जितना यूज किए हैं छोड़ो, वो तो माफ कर दी, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे पाएंगे, लाइट के बिल जो आपने, ये तो दिन के रात में जो चंद्र में के, तो येलो लाइट जो व्हाइट लाइट रात को आता है, चंद्रमा के रोशनी से जो सारे औषधियां परिपुष्ट होता है, सब्जी बनता है चंद्रमा की किरण का, ये जानते ना नहीं, अब जो फल फूल सब्जी फूल होता है ये केवल चांदनी किरण से होता है, बोले ये जो सब खाते हैं ये सब करते हैं ये कोई डिपार्टमेंट कोई फैक्ट्री कोई को किया, किसने, आप तो नहीं किया, कोई तो नहीं किया, यूज तो कर रहे ना आपने, उसका बिल वो भी नहीं किया, अभी बकाया छोड़ दो, केवल प्रेजेंट में नहीं दे पाए उसको छोड़ो, जो मकान कोठी बनाया ये जमीन किसका है, बोले उन्होंने रजिस्ट्री किया, उनको जाकर पूछो उनका था क्या, हम जैसे सकड़ो जन्म होकर मर गए, हमारा कहकर पेपर बना बना करके मिट्टी तो हस्ती हो गई। बोले ये पागल, मैं तो जब से हूं तब से हूं, ये आ करके धूम मचा कर जाते हैं, मेरे तेरे तेरे बाप कहीं गए, किसी की नहीं है, ये तो भगवान की ही शक्ति है, भगवत पत्नी है भूमि देवी, वो देवी, और उसको हम बेमतलब झूठा मोटा अपना मानते हैं। वो रजिस्ट्री ऑफिस 500 साल के बाद भी कहीं खत्म हो जाएंगे, वो रजिस्ट्री मर जाएंगे, कोई डिपार्टमेंट मर जाएंगे, सब नक्शा बदल जाएगा। अरे भगवान थोड़ा ऐसे शरीर थोड़ा हिला दे, थोड़ा सा एक मिनट के लिए तुम्हारा सारे नक्शा पलट जाएगा, है ना। नहीं अभी काठमांडू हुआ था ना कुछ दिन, बस थोड़ा सा रोमांच कर दे तो नक्शा ही पलट जाएगा। तेरा आवास विवास भूमि क्या है, आपका नहीं है ना, तो छोड़ो ये सब तो परमानेंट एसेट तेरा नहीं है। जो तू खाता है अनाज, कोई फैक्ट्री से प्रोड्यूस होता है, कोई बोल सकता कि अनाज मैं बनाता हूं, किसको पता है अभी तक किसी ने सोचा कि मैं एक गेहूं का दाना जमीन में डालता हूं और 2-2.5 महीना में 50 दाना एक मुट्ठी बनकर आता है, कैसे कभी सोचा कोई? इतने सारे वैज्ञानिक सर निभाते कुछ बता सकते हैं कैसे हो रहा है? एक ही जगह पर एक नीम के पेड़ है, एक गन्ना के पेड़ है, अरे उसके रस ही गंगा के पानी पी करके ये होता है मीठा, ये होता है तीखा, क्यों? कोई अज्ञ कुछ पता नहीं, है ना। अरे उसकी बात छोड़ो, जमीन खाने पीने जो पानी पीता है, पानी के बिना बच सकते हैं? साल में एक बार निर्जला व्रत आता है, अरे बाप रे सुन करके धोखा देते, निर्जला पानी के बिना कैसे रहे? जल ही जीवन है, कितनी आवश्यकता है जल, कौन प्रोड्यूस कर रहा है जल? ये मूल वैज्ञानिक अपने को होड़ लगाते हैं, हम जल के बारे में जान, क्या जान लिए तूने? ना H2O, दो हाइड्रोजन उद्जान के कण और एक अम्लजान के कण मिल करके पानी बनता है। तेरे बाप का है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर एक गिलास पानी चाहिए तो बनाकर दे सकता, कहा को करोड़ों डॉलर खर्चा करके उसको सिखा तो पहले से था। तो एक ड्रॉप पानी, एक अणु के पानी में इसको जान करके इतने करोड़ डॉलर में इन्वेस्टिगेशन, हो आई नो फॉर्मूला बना लिया। अरे बेवकूफ, तेरे जन्म होने से पहले हजारों हजारों तालाब नद नदी समुद्र पानी भरा हुआ है, कभी सोचा कौन साइंटिस्ट कौन सा लैबोरेटरी में इतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर उसको बनाया? हु मेड दिस, कौन मैं कोई सोचा? अब एक कण के बारे में जान लिया मूर्ख, कहीं के क्या जाना था? पानी किसका है? बराबर पानी पीता है, फ्रिज में रख करके गर्म करके वो करके है, किसका है कभी सोचा उसके बारे में? कुछ किसका है, कुछ बिल दिया उनके बारे में, इतना पानी यूज किया है अभी तक? छोड़ो पानी का क्या है, जो एक मिनट भी बच नहीं सकता जिसके बारे में, जिसकी वजह से वो जो हवा सांस लेते हैं, कितने समय सांस बंद करके रुक सकते हैं? अब सभी एक्सपीरियंस्ड है, वो किसका है, कहां से प्रोड्यूस होता है? तू ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लिया जो 6 बार दिन में कट जाता है, उसी को बिल पेमेंट करके अपना कोई ईमानदार मानता है, ये सारे में लिस्ट गिनाया, कुछ सोचा उसके बारे में रहने के लिए? और हर मिनट में यूज करता है जो सांस है, यूज करता ना हर मिनट में, क्या उसके बारे में सोचा? अरे जिसको 10 रुपया कोई जाते समय रक्षा बढ़ा देता है, उसको 4 बार थैंक यू करते, ये जो इतना दे रहा है तुझे उसके लिए क्या किया? 100% प्योर नमक हराम है ये तुम्हें, है ना? नहीं किसे बोल दिया कि ईमानदारी, जिनसे इतना सुविधा लेता है, इतने खाता पीता है, एक मिनट भी उनके बिना बच नहीं सकता, उनके लिए वो बोले कि ना वो तो कुछ मांगते नहीं, मुझे मांगते नहीं, तुझे पता है मांगते नहीं, वो नहीं चाहते, आपके ओर से तो उनको धन्यवाद देना चाहिए ना धन्यवाद दूं, लेकिन वो उनके क्वेश्चन नहीं बोला, मांगते नहीं, उनके बात कभी सुनना नहीं, उनको देखा भी नहीं, कभी मंदिर जाते भी नहीं, कुछ उनको पूछते भी नहीं, उन्हें खुल करके अपने मुंह से बोले हैं भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, ये 4 उनके मांग है, उनके बिल है, तो उसमें कुछ नहीं कर रहा है तो कैसी मंदिर है? ये केवल उन व्यक्ति के लिए लगने, हम सभी के लिए लागू है। हम सभी अगर सचमुच थोड़ा सा ही ईमानदारी करना चाहेंगे, 2% भी, तो प्रतिदिन कम से कम दो चार घंटा आकर के ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर प्रभु आपके कृपा से गाड़ी चल रहा है। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा में महामरुख सोचता हूँ मैं कर रहा हूँ करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो बिना तो इंच भी नहीं चल सकता कुछ। तो आकर उनको प्रणाम करना उनके ध्यान क्यों धन्यवाद करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो नहीं आते प्रतिदिन आना चाहिए ठाकुर जी को आकर के प्रणाम करके मन्नत करके जाना चाहिए। थैंक यू सर आज भी आप ही के वजह से मैं जी रहा हूँ सांस ले रहा हूँ पानी पी रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ आपने दिए है ना। नहीं तो हम जाते समय रास्ता में बस फेल हो गए किसी ने लिफ्ट दिया हमको तो 10 रुपया किराया में जा सकते थे ऑटो में हम पहुँच जाते तो कितनी बार जा भी देते हैं थैंक यू प्रभु जी आप थैंक यू सर आपने मदद की 10 रुपया की मदद जो इतनी बार 10 बार थैंक यू कहना पड़ता है जिनके मदद के बिना तो 10 सेकंड भी जीना हराम है उनके लिए क्या कर रहा है अपने कितनी बड़ी दोष लगेगा कितनी बड़ी पाप है। तो इसलिए सारे जो बुद्धिमान लोग ऋषि मुनि चिंतनशील लोग दार्शनिक जो संपूर्ण सत्य को हृदयंगम करके समझ लिए ये बात उन्हें तस्मात therefore हम प्रत्येक मनुष्य के लिए जो कर्म के भागी है उनको एक ही कर्म करना चाहिए क्या न मन बुद्धि ध्यान लगा कर केवल ये 4 काम करना ही चाहिए। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं ये 4 काम तो ऐसा ही है इस 4 काम के बिना कोई मनुष्य जी ही नहीं सकता जीवन के सिद्धांत ही 4 ही है श्रोतव्य कृतितव्यस्य धैर्य पूज्यस्य सुनना बोलना और मन लगाना चिंतन करना और पूजा करना सम्मान करना ये 4 काम के बिना कोई मनुष्य अपने जीवन में जी ही नहीं सकता। अब देखिए सुबह उठते ही अब सबसे पहले क्या बोलते हैं बताए पानी है कि नहीं पूछते ना नहीं रोड से बाहर निकलते ए रिक्शा कितना लगा दुकान में जाते क्या रेट पूछते हैं ना नहीं सुनते ना नहीं उनका तो श्रवण कीर्तन हुआ ना नहीं श्रवण कीर्तन के बिना कोई जी ही नहीं सकता। और उसके बाद किसको सम्मान करना किसको चिंतन करना मनुष्य जीवन का यही 4 ही प्रक्रिया है जिसके ऊपर न्यस्त है जीवन। लेकिन ये सारे आम करने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य एक बात कहते हैं बोले कि आजकल समाज में इसे झूठा किसी के समाचार डेली न्यूज पेपर में अगर कुछ निकाल दो बहुत कुछ झूठ मूठ तो लोग बोले रे इतने बड़े सारा झूठा सच बोले इससे ना उनका फायदा होगा ना आपका फायदा होगा कुछ नहीं होगा। ऐसे श्रवण से ऐसे कीर्तन से ऐसे चिंतन से ऐसे सम्मान से आप पशु ही बनकर मरेंगे कुछ भी नहीं हो सकता तो कैसे भलाई होगा हमका तो मनुष्य हो ये समझ लो। केवल एक ही व्यक्ति के प्रति अगर उनके बारे में सुनना है उनके बारे में बोलना है उन्हीं के बारे में चिंतन करना है उन्हीं को सम्मान पूजन करना है तो आपके जीवन के कल्याण होगा सफलता होगा इसी के लिए तुम बना वही केवल एकमात्र श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य धैर्य पूज्यस्य नित्यता एवरी डे शुड डू दैट ओनली और कुछ भी नहीं करो केवल एक ही काम करना चाहिए ये सिद्धांत देते हैं अगर केवल हमको ही काम करना चाहिए। और इस 4 काम से सबसे प्रथम कार्य है श्रोतव्य। अगर सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं हाउ डू यू नो। तो इसलिए सुनना इतनी आवश्यकता है इतनी आवश्यकता है सुनना। तो इसलिए सबसे प्रथम का श्रोतव्य उनके बारे में सुनो वो कौन है आप कौन हो दुनिया क्या है। बहुत सारे थर्ड क्लास बातें सुनते रहते हैं सुन सुन करके यही से ही दुर्गति होता है हमारा नहीं। अगर सदगति चाहते हो तो केवल उन्हीं के बारे में सुनो वो उन्हीं के बारे में जो पुराण है इसको श्री भागवत महापुराण कहते हैं भागवत और भगवत गीता। भगवत गीता में स्वयं भगवान आपने बारे में ऐसा हूं बताए भागवत में सारे चिंतनशील व्यक्ति वो कैसे हैं वो बताए तीसरे पढ़कर उनके बारे में जानो सुनो श्रोतव्य सुनकर अगर बोलने के लायक हो केवल उन्हीं के बारे में बोलो और कुछ बोलने के तो है ही नहीं हर सेकंड में जिसको कृपा को एहसास करना चाहिए वही बात बोलना चाहिए, और क्या बोलूं, बोलने के लिए संसार में कुछ है ही नहीं उनके अलावा। तो कीर्ति तव्यस्य, अगर चिंतन मनन करना चाहिए तो उन्हीं के चिंतन मनन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं उनके स्तुति में भागवत में, बोलते हैं कोई पिता सोचते होंगे, छोटे बालक बोलते हैं मैं अगर क्या न करूं बच्चा तो मर जाएगा, बच्चा कैसे जिएगा। बोले यही भी उनके अहंकार है, वो पिता माता सोचते हैं कि मैं ना रहूं तो बच्चा को ठीक से पढ़ा लिखा करूंगू, टेक केयर करूंगा, कैसे विकास हुआ कैसे होगा। बोले ये उनका अहंकार है, तुम कुछ नहीं है धूर्त। डॉक्टर सोचता है कि मैं अगर मेडिकेशन न करूं, अब मुझे चिकित्सा ना करूं तो रोगी मर जाएगा। बोले वो भी उनका अहंकार है, ना वो कुछ करता है। क्यों? बोले बहुत लोगों का बहुत बढ़िया बढ़िया सामर्थ्यवान माता पिता होकर के उनका पुत्र नालायक विकलांग और बवंडर भूत प्रेत पिशाच क्या क्या बन जाता है, टूरिस्ट बनता है। कहाँ गए आपके समझ, क्या क्यों नहीं सुधार पाए? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट और सब व्यवस्था होते हुए रोगी कहाँ गया था, रखे कुछ नहीं कर पाएगा। करने वाले एक ही है, एक ही है। एक सत्य घटना मेरी याद आता है, ये भागवत के जो मूल टीकाकार है श्रीधर स्वामी, जिनको भगवान बड़े व्याख्या देकर मूल टीका लिखे हैं, उनके जन्मस्थान उड़ीसा में है। वो ब्राह्मण परिवार के थे, ब्राह्मण दरिद्र होते हैं क्योंकि काम दाम नहीं करते हैं। तो उनके पिताजी माताजी जा चुके थे, वो श्रीधर सिंह विवाहित थे, गृहस्थ थे, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण थे, उनका मन भगवान में लगता था। नृसिंहदेव उनका इष्ट थे, हमेशा नृसिंह पूजा करना, लेकिन भगवत भक्ति वैराग्य था, लेकिन विवाहित किए थे तो मन में हमेशा सोचते थे मैं कैसे निकल करके जाऊँ, मैं कैसे फंस गया संसार से, कब जाऊँ भगवान की भक्ति सेवा कब करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन इसे विचार करके डिसाइड किए, ना आज तो जाऊंगा ही, भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, आज मुझे सर्वत्याग करके प्रभु के शरण में जाना है। सुबह उठ करके स्नान करने गए थे, स्नान करके दूर से, तभी जमाने में हैंडपंप कुआ आदि नहीं होता था, दूर से नदी से पानी लाना पड़ता था घर में खाने पीने के लिए। जाके स्नान करके, उनकी पत्नी घर होती थी इसलिए नहीं जा पा रही थी, तो घर के पानी जो जरा था, एक मेटालिक पात्र होता ना उसे गड़ू गरा क्या बोलते हैं, घड़ा, वो मेटल का पीतल का होता है बड़ा, वो लेकर के स्नान करके उसे भर करके पानी लाए, और आते समय रास्ता में हर पग में यही सोच रहे थे मैं जा करके अब पानी रखूंगा, आ प्रभु बास हो गया, मैं आज निकल जाऊंगा। बोले आप मैं तो आज ही अंतिम दिन मेरा है, पूर्ण निर्णय करके स्नान करके पानी पानी रखूंगा तो जाऊंगा। वो आ करके घर में दरवाजा खोले प्रवेश करने के लिए, अद्भुत दृश्य देखे। जैसे दरवाजा खोले, अपने गीला कपड़ा गमछा पहने थे, कंधे पर जल घड़ा था, दरवाजा खोलकर देखे कि उनके पत्नी के सब पड़ा हुआ है, मर चुकी है, डेड। उनको वायु की देहा तो कैसे देहा, क्योंकि अत्यंत गर्भ वेदना से, प्रसव वेदना से मर चुकी है, और उनके पुत्र संतान सद्य जन्म होकर के रो रहा है, अभी उनका नाल छिदन भी नहीं हुआ, कोई नहीं घर में, इस अवस्था में पड़ी है, वो बेटा रो रहा है और वो मर पड़ी है अभी अभी इसी बात। अब तो बोल करके हताश, उनके जमीन के पैर के नीचे जमीन खिसक गया, चतुर्दिक अंधकार दिखा, अब क्या करूं प्रभु, मैं आपके शरण में जाने के लिए डिसीजन करके आया था, ये क्या कर दिया, अब क्या करूं, कैसे जाऊं, अब तो कोई है ही नहीं, माँ तो मर गया, बच्चे के मैं ही पिता हूँ, उसको रखण वखण पाल, मैं ही उनका माँ बाप बनूंगा, कुछ नहीं करूंगा तो कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जाऊँ। पानी घड़ा को कंधे में रखते रखते रो पड़े, सोचने लगे मैं क्या करूँ अभी, तो मेरे से होगा नहीं, क्या आप नहीं चाहते मैं जाऊँ आपके शरण में। यही से अद्भुत परीक्षा, यही से घटना कर दी कि मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। यही खड़े होकर दरवाजे के बंधे पर, पहले दरवाजा होता था ना दहली होता था, थोड़ा ऊंचा चौकाट लगता था, उसके पास में खड़े होकर सोचते थे। वो घर जो था घास फूस का था, ऐसे पक्के घर नहीं होता था, घास फूस समझते ना, पुआल आदि का घर बना, तो उसमें से एक छिपकली, छिपकली रहते हैं पुआल में, एक छिपकली का अंडा गिरा उनके सामने, घर में रहते थे ना छिपकली, छिपकली का अंडा गिरा, गिर करके उनके सामने खड़े, उसी का डेड बॉडी पड़ा, उसके किनारे पड़ा, पड़ करके फट गया, ऊपर से गिरा फट गया, फट गया तो उसके अंदर से एक छिपकली के शावक निकला, बिल्कुल लाल लाल, अभी उनका आंख भी नहीं खुला है, तो उसको देख रहे थे ये क्या हो रहा, वो गिरा अंडा तोड़ गया, उनके माँ बाप को है ही नहीं, तो एक अंडा था वो गिरा फट गया उसके अंदर निकला, निकल करके वो देखते हैं ये क्या हुआ, ये ऐसे ही है कि हमारा भी। वो निकल करके थोड़ी देर में देख रहे हैं कि छोटी सा कीट पतंग एक उड़ के जा रहा था, तो उनका आंख भी नहीं खुला, कैसे उनको पता चला, जम किया पकड़ कर उस मुंह में लेकर खा लिया। आप श्रीधर जी बोले कि समझ गया प्रभु, ये उदाहरण आपने दिया कि मैं अहंकारी, मैं सोचता था मैं नहीं रहूंगा तो कौन बच्चा को पालन पोषण करेगा, माँ भी मर गया मैं भी चला जाऊंगा, अभी सद्य जात उसका नालक छेदन भी नहीं हुआ, कैसे क्या देखभाल करेगा। मेरे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए रे मूर्ख, ये आंडे से निकला, उनका माँ बाप का कोई एड्रेस ही पता नहीं उसको, अभी अभी आंडे तोड़ करके निकला, अभी कौन बुद्धि दिया खा लिया जाकर उसको, अभी आंख भी नहीं देखा है लेकिन इस गंध से शब्द से जान लिया, पकड़ लिया उसे, खा लिया, मुंह खुला था आंख नहीं खुला था, अंधे अवस्था में खा लिया। जब उसको पालन के ऐसे व्यवस्था किए, वो कहां से पतंग दौड़ कर आएगा उनके सामने, वो खा जाएगा उसको, क्या अद्भुत अरेंजमेंट है, क्या व्यवस्था है, उनको तो कोई दूध पिलाने के लिए उठाने के लिए भी कोई नहीं थे, उसके लिए व्यवस्था कर दे खाने के लिए, मैं कहा को सोचता हूँ मैं ना हूँ तो वो चलेगा, वहीं पे जल का घड़ा एक बाहर के दरवाजा बंद पर रखे वो चल दिए। उनके पत्नी का डेड बॉडी पड़ा था, बच्चा रो रहा था अभी भी रक्त में सने हुए, चले पड़े काशी में आए, आ करके अपने अभिष्ट इष्ट देव के सामने रह करके बहुत रोए, फिर साधना भजन की, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखे हैं, सबसे प्रथम टीकाकार है। और लगभग 40-42 साल के बाद में, क्योंकि उड़ीसा के थे और जगन्नाथ जी की तो कोई भूल नहीं सकते, बोले एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन कर, वृद्ध हो चुका हूँ अभी, मरने से पहले एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन करूँ। तो जगन्नाथ जी के डोरी इतने खींचा तो गाड़ी फाड़ी तो तब जमाना था, पैदल में चल करके गए, अकेले थे बाबा जी, बड़े वृद्ध हो चुके थे। अब जगन्नाथपुरी पैदल में गए, जाकर पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर पहुँचे और बड़े भव्य सब था। वो जाकर पहुँचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर आ रहे थे जो गजपति महाराज थे, उनके एक सभा मंच लगा था जिसमें एक व्यक्ति इतने विद्वतापूर्ण जगन्नाथ की लीला कथा बता रहा था, तो उसको जाकर बैठे सुने, बड़े बड़े विद्वत मंडली बैठे थे, बैठकर सुने, सुन करके उनके मन में बड़े जिज्ञासा हो, बड़े ओजस्वी पुरुष है, बड़े वेद वेदांत से बड़े सुंदर बात कर रहा है, भगवत लीला वर्णन कर रहा है। उसको सुनकर मैं लगा बोले मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं भागवत की टीका भी क्या हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़े धुरंधर लगता है, कौन है उनके कोई व्यक्ति के मन में जैसे कोई खाना पकाने वाला कोई अच्छा बढ़िया खाना तो पता नहीं कैसे पकाया, थोड़ा मन करेगा उनसे सीखने के लिए, बोलने वाला जो अच्छा बोलने वाले से सीखने वाला, जो अच्छे उनके ट्रेड वाला मिलेगा उनसे संग करने के लिए मन करता है ना, तो उनको बोला कि मैं तो इसी ट्रेड में हूँ ही, मुझे थोड़ा उनको अहंकार करना चाहिए, उनका एसोसिएशन मुझे करना चाहिए। तब सभा सब उठ कर चले गए, उनका तो मन लगा था, जाकर पता लगा वो जो महाराज थे कौन है कैसे, अरे वो तो राज पंडित राजपुत्र है, राजा का बेटा है, मुख्य राज पंडित है वो इस क्षेत्र के। अच्छा कैसे पता कि बोले राजा के लड़का इतने विद्वान हो गया, राजा का लड़का क्षत्रिय होता है वो इसे किसे हो गया। अब जाकर पता लगाए, एक आध दिन रुके, इन्विटेशन चालू के उनसे मिलने के लिए, तो बहुत बड़े व्यक्ति ऊपर में रहते थे तो युवक थे वो, उनके पास कैसे कैसे उनके पास पहुंचा, पहुंच कर उनको प्रणाम किया, सम्मान करे, उनके बारे में जानकार लगाया, जानकार करके ये पता चला अंतिम में तस्मात, ये इसलिए निर्णय हुआ क्या, ये जो व्यक्ति थे वो ही लड़का उन्हीं की खुद के पुत्र जिसको एक दिन रक्त में सुने छोड़कर चले गए थे अंत माँ के पास। तभी सिद्धर स्वामी सर में हाथ ठोके बोले हे प्रभु जगन्नाथ धन्यवाद, मैं मुरा कुछ दिन सोच रहा था अगर मैं ना जाता होता हो करके उनको लालन पालन करता, आज आधे सद को भिखारी रिक्शा वाला बनता, क्योंकि मैं तो हैंड टू माउथ वाला हूँ, उसको कोई अच्छी कॉलेज उसको मैं तो पढ़ा नहीं सकता था, मांग कर खिलाता और क्या कर पाता उनका, मैंने बड़ा करके कितने बड़ा क्या बड़ा कर सकता था, लेकिन मैं आपके शरण में छोड़कर चला गया, आपके दायित्व में छोड़कर चला गया, आपने क्या अद्भुत परिपोषण किया पालन किया, ये राज पंडित करके रख दिया। बोला कैसे, बोले क्योंकि आप तो चले गए, गांव के लोग सब उठे बोले सुबह सुबह क्या रो रहा है, जाकर देखे तो डेडबॉडी पड़ा रहे तो हल्ला गुल्ला हुआ, तो कोई राजकर्माचारी आ रहा था, वो देखा बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, कौन ऐसे निष्ठुर चला गया, तो खबर तो बच्चे को उठाए, कोई नर्स को बुलाए, ठीक ठाक कर लेकर राजा का नोटिस किए, राजा बोले कोई बात नहीं लाओ। तो राज घराने में परिपालन हुआ तो जब उनका ज्योतिष के बुलाकर उन्होंने हाथ पर लक्षण दिखा, बोले तो बड़े विद्वान ब्राह्मण पुत्र है, तो राजा ने बोला तो मेरा बेटा बनाकर रखता हूँ उसको। तो आपने बेटा बनाकर राजा रखे, राजा के बेटा, तो राज जैसे कुछ से परिपालन हुआ, इतना हाई स्टैंडर्ड में उसका देख रेख, उनका पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, अब ये कारण बीज तो वही था, है ना, नहीं, और वही था विद्वान के बीज, विद्वान ही बना, लेकिन पालन पोषण आपके पास रहता था आप नहीं कर सकता था, क्या प्रकृष्ट रूप में उसका हुआ, ये है भगवान की सुव्यवस्था, वो सो परफेक्ट अरेंजमेंट, लेकिन हम उसको विश्वास ही नहीं करते। मूढ़ मति केवल आपने स्वार्थ की, अपने तथाकथित शरीर और इंद्रिय की आराम के लिए पूरे जीवन भर गवा देते हैं, और ये शरीर इंद्रिय है क्या चीज, ये तो हमारे कवर मात्र है ना, नहीं। भगवत गीता में सबसे प्रथम अध्याय में यही बताया जाता है ज्ञान कि आप और आपके बड़े शरीर क्या भिन्नता है, नहीं है? हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर शरीर ही है, जो शरीर के मालिक है, ये जो मैं पदवाच्य मैं हूं, ये मैं है कौन? आपको कोई पूछे हुआरी साहब, आप तुरंत बोलेंगे आपका नाम बताएंगे, मैं सो एंड सो, मेरे पोस्ट पोजीशन, वो आईडी भी दिखा देंगे, फोटो आईडी ये है। अरे मूर्ख, ये फोटो आईडी तो तेरे ढक्कन का है, तेरे कवर का है, तेरे थोड़ी है। हुआरी ये कवर क्यों मुझे रखें? जैसे कभी आप बाजार में जाएंगे, आजकल सब मोबाइल खरीदने का क्रेज है, नया i7 ना क्या निकला आजकल, निकल गया ना i7, उसके बारे में पागल होकर के 60,000-80,000 दे करके अब खरीदे, बड़े मॉल में जा करके अब उतने ऐसी पैकिंग करके सुपर दिया अपने कवर, बड़े खुश होकर लेकर आए, 50 लोगों को दिखाते, बोल बोल कर आए, और लेकिन हुआ क्या, उसका अंदर फोन नहीं दिया था, वो कवर ही दिया था, बढ़िया सा पैकिंग करके दिया था, और खुश होकर घर में रख करके खूब एक दिन जो बोला फोन करूँ छटूंगा, को क्या नहीं यूज करूंगा, खोल कर देखते हैं उसके अंदर है ही नहीं, तो कैसा होगा आपका मन, जाएंगे ना उसके नाम गाली झगड़ा करके जाएंगे, अरे अरे मैं भूल गया था, तो दोबारा पैकिंग करके दे दे, और एक बढ़िया और रंगीन कागज में पैक करके, अब फिर खुश होकर आ जाए। हम केवल दुर्बुद्धि केवल पैकेट के ऊपर संतुष्ट होते हैं, कवर के ऊपर, माल को अभी तो दिखे ही नहीं क्या चीज, हम जो बैठे किसी को पता नहीं हम जो है ये वस्तु देखने में कैसा है, रंग कैसा है, उच्चता कैसा है, क्या गुण है, किसी को नहीं पता, क्या आवश्यकता है उसको, वास्तविक हमारा क्या आवश्यकता है, किस लिए आए कोई नहीं जानता, तो उसके बारे में जानना, उसी के उद्देश्य को समझना मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही होता है। और जो जान चुका है, जो इतने महामहिम व्यक्ति मनुष्य उस खूब सोच विचार साधना भजन करके जान चुका है कि मैं कौन हूं, मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या है, तो उन्हीं का स्टेटमेंट ये है, तस्मात इसीलिए एकमात्र प्रत्येक प्राणी के मनुष्य के विशेष कर्तव्य होता है उन्हीं के बारे में सुनना, उन्हीं के बारे में बोलना, उन्हीं के बारे में चिंतन करना, उन्हीं को सम्मान पूजन करना, यही चार क्रिया करना, केवल एकमात्र यही लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, यही भागवती सिद्धांत है। अगर उसको नहीं करते हैं तो खूब हमारा पनिशमेंट होगा, तो इसीलिए ये सब अगर शास्त्र ने पढ़े समझेंगे किसे किसे समझे, तो इसलिए ये भागवत में सारे निर्णय लिया गया है, निर्णय किस लिया गया, नृप निर्णितम, महाराज परीक्षित चक्रवर्ती नरेश स्वयं बैठे हैं, हजारों हजारों बड़े बड़े सीनियर मुनि ऋषि मंडली बैठे हैं, बड़े विद्वान पुरुष बैठे हैं, व्यास सूक नारद तक बैठे हैं, इस सभी मंडली में सभी के साथ में ये डिसीजन बहुत विचार चर्चा करके लिया गया कि एकमात्र समस्त मनुष्य के लिए एक ही कर्तव्य करणीय है, काम एक ही हो, दूसरा कुछ है ही नहीं, बाकी सब दुनिया भाड़ में जाने, तो सब ऑटोमेटिक होता है, हम कुछ नहीं करते, बोले कैसे होता है, बोले प्रकृति क्रियमाणा नहीं, प्रकृति ऐसे सेट करके भगवान रखे वो होगा, आप क्यों हिड़क ले रहे, वो होगा, मूर्ख तुम मत नहीं सोच, तू जान भी नहीं सकते कैसे हो रहा है, वो होगा, तो मैं क्या करूं, केवल ही करना है, केवल ही चार काम करना है, बाकी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, अब कहीं करना, इस बात को समझ करके और केवल इसी कर्तव्य की ओर करने के लिए विचार बनाना और करना, इसी में जीवन की परम कल्याण निहित है, वही जीवन की लक्ष्य है। यही भागवत की उपदेश है, यही सिद्धांत। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। स्टोरी क्या? तो सख्या सही घटना है।
तो इसमें कभी कभी ऐसा मतलब मन में विचार आता है कि जैसे हम बच्चों को छोड़ कर चले गए और चुपड़ी को ऐसे देखा हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो भगवान ने हमको जो दिया है हमको उसकी रक्षा करना चाहिए। तो ऐसा कभी मन में विचार आता है कि नहीं, मेरा ड्यूटी है एज ए फादर, मेरे को बच्चे की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि भगवान देते ही ना।
वेरी गुड क्वेश्चन, सबको समझ में आया?
जी, मैं भी पूछने वाली।
हाँ, पर सभी का मन में यही प्रश्न है, यही हमारी मूर्खता है, हमारे दिमाग में यही समझ में आता है। लेकिन ये जो समझदार व्यक्ति वो निर्णय लेते, तेरे मूर्ख तू क्या करेगा, तू करने से ज्यादा क्या कर सकता है, क्या क्षमता है तेरे करने का, क्या कर सकता था? अगर उसी दर्शन में बोला ना, अगर वो होते तो व्हाट यू कुड हैव डन, क्या कर सकते थे? जो समर्थवान है, परम पिता है, वो जिस प्रकार करेगा उनके ऊपर विश्वास करो। और हम क्या करें फिर? आज ए फादर, आज ए मदर, आज ए टीचर, आज ए सन, आज ए हस्बैंड, आज ए वाइफ, आज ए व्हाट एवर, एक ही कर्तव्य है, तस्मात एक ही न मनसा। एकाग्र चित्त से, एकाग्र बुद्धि से, केवल श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चेद हेय पूज्यस्य नित्यदा, इतना ही करना चाहिए, बाकी रेस्ट एवरीथिंग परफेक्टली हो जाएगा। भागवत में एक श्लोक में एक बार कहा गया है कि हम संसार में, समाज में जब जन्म होते हैं तो कई प्रकार के ऋण लग जाते हैं, हम जो शास्त्र पढ़े जानते ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण, ऐसे मिनिमम तो 5-6 ऋण तो लगता ही है। तो इसके लिए, समाज के लिए हम कुछ करना चाहिए, माता के लिए, पिता के लिए, बंधु के लिए, शिक्षक के लिए, गुरु के लिए, राजा, सबके लिए कुछ कर्तव्य हमारा होता है, क्योंकि हम उन्हीं से लेकर के परिपोषण बने हैं, तो ये सब लोन लगता है। तो भागवत सिद्धांत कहता है कि देवर्षि भूतामना भूतात्मा निरुणंग पितृणाम जा किंग करो नहीं ऋणीच राजन। बोलते हैं कि जो भगवान के किंकर्य हो गया, भगवान के सेवक बन गया, भगवान को ही सब कुछ किया, तो इमीडिएट उनका सारे लोन टेक केयर, ऋण मुक्त हो गया। ना किंकर नाय ऋणीच राजन जस्यात्मना, इस लोग है ना, जो आपने मन बुद्धि के लगाकर भगवान की भक्ति करता है, फिर किसी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं रह सकता। अब ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ परफेक्टली। और इस उत्तरदायित्व अगर हम पूरा करना चाहें तो कर पाएंगे? समुच्चा अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाएगा, पत्नी की तो खुशी करना तो बात ही बात, क्या बात है? और बाकी किसी को खुश नहीं कर सकता हमने, सब गालियां देंगे, खूब कोसेंगे, पूरे मदद लगा करके, पूरे जी जान लगा कर करो तब भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ छोड़ करके केवल सातुतांग पति भगवान को खुश करो, ऑटोमेटिक सारे पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कोई पॉइंट बाकी नहीं रहे। ना किं करो ना अरुणी चराजन, अगर सर्वतोभाव से भगवान की भक्ति करें। ये प्रकट प्रमाण है, कई जगह में देखा गया है। एक छोटा सा बच्चा था, सुने होंगे महाराज ध्रुव के बारे में। ध्रुव एक बालक था, बालक अवस्था में और एकलौता बालक, राजपुत्र था, धन्य हो माता सुनीति। 5 साल की अवस्था में उसको घर बोल दिया तो जाओ जंगल में। 5 साल का बेटा तो स्वयं नहा नहीं सकता, खा नहीं सकता, कपड़ा पहन ही नहीं सकता, हर चीज में माँ की हेल्प चाहिए उसको। ध्रुव बालक क्षत्रिय पुत्र था, राजपुत्र, इतने गुस्से में रो रो कर जर्जर होता था, बदला लेना चाहता था। पिताजी मुझे इसे कि मैं पिताजी के बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उससे बड़ा सीट मुझे चाहिए, पोस्ट चाहिए। माँ बेचारे बोला मुझे तो दासी की तरह भी देखते नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों रोएंगे, क्या बोले बेटा तेरे विमाता के प्रति क्रोध मत करो, पिताजी के प्रति क्रोध मत करो, सचमुच तू चाहता है बनाना, मैं चाहता हूँ माँ बनने के लिए, बताओ हाउ कैन आई बी, मैं कैसे बनूं? बोले केवल भगवान ही भरोसा, भगवान होता कहाँ है, मैं उनके पास अभी जाऊं ना। बेटा मैंने सुना हो तो ऋषि मुनि सब जंगल में जाते हैं, वन में रहते हैं वनचारी। अच्छा मैं अभी वन को जाता हूँ। ना बेटा जा, तुरंत उसी स्पॉट बेटा निकल पड़ा जाने के लिए। जा रहा था रास्ता में थोड़ी देर जाकर मुंह बड़ा बोला, माँ अभी मुझे 12 बजे भूख लगेगा, आप तो जा नहीं रहे मेरे साथ, कौन खिलाएगा? रात को सोने के लिए बेड कौन डाल देगा? तो धन्य माता सुनीति उनको सब सब किसी समय से कहा, बोले बेटा ध्रुव मैं तेरा माँ जरूर हूँ, तेरे ये शरीर का जन्मदाता, लेकिन मैं इस प्रकार टेक केयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास देख ना, तू रो रहा है, मैं भी रो रही हूँ, क्या कर सकती हूँ? लेकिन एक और माँ है बेटा, तू जिसके पास जा रहा ना, उनके अंदर इतने मातृत्व है। ये श्लोक भागवत में है, सुनीति के द्वारा बोली गई श्लोक। बोले रे बेटा, एक जो प्रभु है भगवान है, करोड़ों माँ के ममता और स्नेह को अगर इकट्ठा कर दे, उससे करोड़ गुना ज्यादा उनके पास है ममता। अगर उनके ऊपर पूर्ण भरोसा करो, वो जैसे टेक केयर करेंगे हम तो कोई काम के नहीं। सही ममा, वो सबका हाँ पूरा करेंगे, भरोसा करो बेटा उनके ऊपर, जाओ। और गए, वो विदा कर दिए जंगल में। आजकल तो 25 साल के पढ़े लिखे लड़का को मंदिर के भेजने के लिए जाए भक्त बनो, बोलते नहीं मत जाओ, किस कर डालेंगे माँ बाप ऐसे होते। अब विदेश में जाकर लड़की भेज कर वहां चलेगा, एडवांस एडवांस कर रहा है, ऐसे हमारी दुर्गति। लेकिन वो सुनीति ने उनको भेज दिए और गए 6 महीना में करके आए ना नहीं, और वही माँ को अंततः भगवत गति प्राप्त हुआ केवल इस पुत्र की क्रिया कर। तो अगर कोई कमा दमा करे, लड़ाई झगड़ा करते अपने भाई के साथ, पिताजी के साथ, कर पाते हैं? क्योंकि सुनीति भी राजरानी थी। आजकल जैसे हम जैसे माता होते, सुनीति तुरंत उनके पिताजी को फोन करता, भाई को फोन करता, क्योंकि वो भी राजपुत्र राजरानी है ना, राजकन्या होगी उनकी। तानुपाद महाराज की पत्नी मतलब वो भी कोई छोटी मोटी तो होंगी नहीं, उनका भी पिताजी राजा होंगे, उनके भाई भी राजकुमार होंगे। तो उनको फोन करती, केस करी, झगड़ा करती, वो नहीं की जैसे हम लोग करते। ऐसे करने से क्या होता और ऐसा करने से क्या हुआ, प्रकट प्रमाण है सर। ये हमारे समाज की तथा कथित दुर्बुद्धि विचार, अगर उसको छोड़ करके समझ से केवल उन्हीं के शरण में जाए तो क्या फल हो, देख ली 6 महीना के अंदर। आजकल तो कोई झगड़ा कर केस करे, 60 साल में ही अपने केस के फैसला आ जाए तो बड़ी बात है, आपके जीवन में नहीं आएगा। तो ये देखिए 6 महीना में, 6 महीना में बालक ध्रुव के सामने भगवान वैकुंठ आकर के उनके दरवाजे पर खड़े हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये है भगवत भरोसा। लेकिन हमारा मूढ़ बुद्धि में बैठता नहीं, कैसे हो सकता, क्योंकि इतने कचड़ा भरा हुआ है हृदय में, तो इसलिए फिट नहीं बैठता। तो इसलिए आचार्य लोग कहते हैं सबसे पहले हरि भजन करो, नियम पालन करो, थोड़ा तो सफाई करो, तब तो दिखाई पड़ेगा क्या फैक्ट है। हृदय में निर्मलता पवित्रता थोड़ा आ जाए तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आता ही नहीं, मन में बैठता ही नहीं, उपद्रव करता है। इसी के लिए जरूरी है उसको पढ़ो, उसके साथ साथ जो नियम पालन के साथ भगवत भजन कोई करे, जितने जल्दी से जल्दी हृदय शुद्धि होगा, हृदय शुद्धि कर्म के साथ ये बात बिल्कुल जम जाएगा, बैठ जाएगा। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब महान पुरुष, उनके सब पवित्र आत्मा बैठ चुका है, वो समझ चुका है, वो बाकी कुछ नहीं करना चाहते ना, हमारा परफेक्ट काम जो करना है हम कर रहे हैं। यस, आया समझ में कुछ? हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। महाराज जी आपने बताया एक ही मन सर, एक ही मन से हरि का भजन करना चाहिए, लेकिन जो मन है वो जैसे अर्जुन ही बोलते हैं भगवत गीता में, चंचले मुहि मन कृष्ण, तो मन तो भागता रहता है, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस हमारे जितनी भी एक्टिविटीज रही हैं वो तो भक्ति में नहीं रही हैं, लेकिन वो हमारा मन हमें भगाता रहता है अलग अलग जगह पर। लेकिन कैसे उसको चैंटिंग भी करते हैं कि श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, उसके बाद भी मन भागता है, तो और कैसे इसको साथ सकते हैं?
प्रश्न सबको समझ में आया? आप सबका मन में प्रश्न भी था ना, करत रहा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा मन तो और कहीं जा रहा है, इतने चंचल है अर्जुन। ये आजकल की बात ही नहीं, ये 1917 के 18 की बात नहीं, ये हजारों साल पहले भगवान के सामने खड़े होकर अर्जुन बोले इम्पॉसिबल, चंचल ही मनं कृष्ण प्रमाथि बलवद्रुढ़ं। इतने बलवान है मन, वायुरी में सदुष्कर्म, मैं हवा को भी कंट्रोल में कर लूं, लेकिन मन को, हम तो हवा को कर ही नहीं सकते, लेकिन अर्जुन का समर्थ था, बोले मैं भी कर लूं। और अर्जुन इतने तेजस्वी माने इतने इंद्रिय विजय पुरुष थे, आपको अर्जुन को पता होगा, एक बार उन्होंने गए थे अपने पिताजी का स्वर्ग में, इंद्र के पास गए थे, इंद्र ने अर्जुन के इतने खूबसूरत चेहरा को देख कर, रूप को देख करके उनको स्वर्ग के अप्सरा उर्वशी, जो कोई स्वर्ग के प्रोडक्ट नहीं है, भगवत प्रोडक्ट है, डिवाइन अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजे सेपरेटली, उनको तुष्ट करने के लिए, प्रसन्न खुश करने के लिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ दी, कोई माइकल लाल आजकल जमाने में ऐसा है? ऐसे इंद्रिय संयमी पुरुष अर्जुन, उनका स्टेटमेंट है मैं मन को संयम नहीं कर सकता हूँ, असंभव। लेकिन भगवान बोले क्या चलेगा? नहीं, बोले नो, मैं समझ रहा हूँ मन इतने बलवान है कि मन बस नहीं कर, फिर ना मन को बस में करना, जोग इंद्रिय संयम, जोग का साधन का एकमात्र लक्ष्य है मन को बस में करना, ना कैसे करूँ, ना मैं सुनो करना कैसे, कैसे करूँ, ना अभ्यास जोग जुगते न चेतसा न अन्य गामी, ना अभ्यास करो, अभ्यास करते करते चित्त एकाग्र हो जाएगा, कहीं अन्य जगह में नहीं जाएगा। परम पुरुषम दिव्यम जात पार्था अनुचिंतयन, बारंबार चिंतन करो, अभ्यास करो, अभ्यास समझते ना, उसको सादा भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुधार, ये जो जड़मति है वो सुधर जाएगा अभ्यास से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप सब जन्म से कभी गाड़ी ड्राइविंग को छोटे बच्चे सीखे थे क्या? करते करते हो गया ना प्रैक्टिस, टाइपिस्ट फोन एनी एवरीथिंग प्रैक्टिस कर, उसको प्रैक्टिस करो, मन भागता है तुरंत लाओ खींच कर, फिर जा, फिर अनुचिंतन से बारंबार चिंतन करो, मन चला जाता है, नहीं प्रभु अब एक सेकंड में हम जप करते हैं, सचमुच आप बैठ कर कलना प्रसंग को जप करें, अब जप करते हैं, मैं इतना पूछता हूँ जो 108 दाना को छोड़ते, एक ही दाना के ऊपर एक ही महामंत्र को आप अनिष्टी चिंता कर देखो, मन भगवान रहता है कि एक महामंत्र उच्चारण में कितनी बार मन भाग जाता है, कितनी बार, जस्ट बाई चैंटिंग वन नेम। तो इसको सोच करके फिर लगाओ, कम से कम एक नाम तो मन भगवान मन लगा कर करूं, एक नाम करूं और दूसरा एक करूं, दो चार तो दिन में कर लूं, फिर दूसरे दिन पांच करूं, चार पांच नाम ही बाकी दुनिया में झाड़ू, इसी को इस प्रकार अभ्यास करते करते एक समय आएगा चेतसा न अन्य गामी नाम, कहीं और नहीं जाएगा, वहीं पटक जाएगा। बाकी दुनिया भर के साधन यही तो साधन है, साधन का ही मन को भगवान ने लगा, मई व मन आधस्तंग मई बुद्धि निवेश है, जोग जुंजन मदाश्रय है, भगवान मन लगाना यही परम जोग है, परम साधन है, इसी को अभ्यास करना पड़ेगा, मन भागता है फिर खींच के लाके लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ किसी को मुझे बोल रहे थे जब नहीं, कहे देखिए हमारे जितने इंद्रिया है ना, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, ये सारे तो हैं काम करता है, लेकिन मन के बिना कोई काम नहीं कर सकते। आप परीक्षा के जैसे सामने बैठे हैं आपने, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आँख खुलकर बैठे हैं, कोई आदमी आया और आपने कुछ सामान आपके पास लेकर चला गया, आप अगर अन्य मनस्क हो, अच्छा आए थे क्या, अरे तेरे सामने तो आया, ओ अनमाइंडफुल था, क्या कहेंगे, मन और कहता है, इसलिए मैं देख कर भी देख नहीं पाया, सुन रहे कान में कोई टिप्पणी लगाया गया, खुल दोनों कान खुला है सुना है, अगर आप मन और कोई लगा है तो पूछेगा अरे क्या बात, ओ मन माइंडफुल था मैं सुन नहीं पाया, सामने बैठ कर भी सुन नहीं पाएंगे कान खोल कर, क्योंकि माइंड अगर साथ ना दो तो सारे इंद्रिया यूजलेस है। तो इसलिए अगर जो भगवत नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 32 अक्षर 16 शब्द वाले भगवत नाम को सुनने के लिए प्रयास करो, सुनना मात्र से मन लगेगा, नहीं तो सुन ही नहीं सकते, मन के बिना नो हियरिंग पॉसिबल नहीं श्रवण करना। तो अगर सुनना चाहेंगे तो मन तो है, मन अपने आप लगेगा, मन जा नहीं सकता कहीं, नहीं तो सुन ही नहीं पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं उसको सुनो तो मन रहेगा उसमें, मन कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मन के बिना सुनाई नहीं हो सकता। तो जो आप बोल रहे हैं माला के साथ में उसको सुनो, ये मुंह से कान डिफरेंस कितना है, 6 इंच हो, 6 इंच की दूरत्व को केवल हमको साधन करना है, इतने से काम बन जाएगा, ही बड़ी साधन। जो आप बोल रहे हैं जस्ट टू हियर, आप ही सुनो, यही में मन से मन बस में आ जाएगा। मन तारयति इति मंत्र है, जो मन को त्राण करता है उसी को मंत्र कहते हैं। वो तो महामंत्र है, लेकिन हम प्रोसेस गलत कर देते हैं। जो बोलते हैं उसको अगर सुने तो ऑटोमेटिक होगा, धीरे 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 शुद्धिकरण मन लगेगा। ओके
जैसे कभी कभी सेवा करते हैं तो वैष्णव अपराध भी होता है कि कभी कभी हम किसी से दुर्व्यवहार करते हैं या कुछ होता है कि डांट भी देते हैं सेवा में, तो उसमें मतलब वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं कि वैष्णव अपराध भी ना हो? कभी कभी हम व्यवहार ये सोचते हैं
तो कभी कभी होना चाहिए अपराध, अवसंभावी है, होना चाहिए। आप बोलेंगे मेरे बिल्कुल अपराध ना हो, ये गड़बड़ है। नहीं, होना चाहिए। अपराध करके, भूल करके हम एक्सपीरियंस होंगे, सुधारेंगे, सीखेंगे, है ना? तो इसे डरो मत। हमारा जो प्रारंभिक स्थिति अपराध स्थिति होता है ना? तो अपराध होगा तो उसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, फिर उसमें बचेंगे। अपराध नहीं हो तो ये गड़बड़ है, होना चाहिए, तब तो सीखेंगे। अरे भक्ति इतना दूर वैष्णव अपराध हो, जाकर उनके चरण में क्षमा मांग लो ना, मिट जाएगा। स्विच ऑन है, स्विच ऑफ कर दो, है ना? जैसे अपराध होता है पता चला क्या करना चाहिए उसको मिटाने के लिए, क्या प्रार्थना करो? इतना भी नहीं करोगे तो पर कैसे चलेगा? तो इसीलिए हमको नम्र करने के लिए तो है, जो गलती करते हैं जाकर माफी मांगो, उन मांगो, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की। तो आप लोग सब पूछे, हमारा तरफ से भी एक कहना है आप लोग को, आज आप जितने यहाँ बैठे हैं प्रतिदिन आएंगे ना नहीं क्लास में? अगर आपके भलाई चाहते हो, मेरे कुछ नहीं होगा, हम तो जाएंगे। आप लोग के लिए रुद्रपुर जितने आप आए हैं श्रद्धा लोग, अगर प्रतिदिन आएंगे और प्रतिदिन इस प्रकार एक एक श्लोक का पढ़ेंगे, जिस प्रकार इसलिए करके उसको उच्चारण भी करेंगे, उसके शब्दानुवाद और उसके अनुवाद और तात्पर्य लिखा उसको पढ़ेंगे, और कुछ तो इतना देर नहीं तो कुछ बात तो आलोचना करेंगे आप मिल करके, इतना ही करो। अब मैं लास्ट नेक्स्ट टाइम आएगा देखना तो आप एक एक सुपंडित बने होंगे। अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे थोड़ी दिन में अपना कैसे प्रगति होगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना? दिस इज प्रैक्टिस। हरे कृष्ण।
तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी यहाँ पर आए और महाराज जी ने हमें प्रवचन सुनाए। तो हर एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करें।